हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति की निगाहें जब अर्णव पर पड़ी तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर जाने क्यों पर अंदर सीने में कुछ सुलगता हुआ सा महसूस हुआ और अगले ही पल उसने उस पर से निगाहें फेर लीं। ये देखकर अर्णव के लबों पर शरारती मुस्कान थिरक गई। कुछ देर बाद कपल्स एक्सचेंज हुए और इत्तेफाक से धृति घूमते हुए अर्णव के पास आ गई। धृति कुछ समझ पाती उससे पहले ही बिना एक पल अर्णव ने उसकी कमर पर अपनी बांह लपेटते हुए उसे खुद से सटा लिया और चेहरे पर बिखरे उसके रेशमी जुल्फों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए कान में सरगोशी की। कौन है वो लड़का जिसके साथ इस पार्टी में आई हो और डांस भी कर रही हो? धृति से सवाल करने के बहाने अर्णव ने उसके जिस्म और खुले बालों से आती खुशबू को अपनी सांसों में बसा लिया। धृति जो उसके करीब आने से सकपका गई थी और बिन पानी की मछली जैसे उससे दूर होने को मचलने लगी थी, अर्णव का सवाल सुनकर गुस्से ने उसके पैर पर अपनी हील दे मारी और दांत पीसते हुए बोली, किसी के भी साथ आऊं आपसे मतलब। अर्णव के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई, पर इतनी आसानी से हार मानने वाला तो वो भी नहीं था। पल भर को धृति पर उसकी पकड़ ढीली जरूर हुई, पर धृति को खुद से दूर जाने देने का मौका ना देते हुए उसने उसे अपनी ओर करीब कर लिया और इंटेंस निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मतलब तो है स्वीटहार्ट, पति हूँ तुम्हारा, मेरी वाइफ किसके साथ है ये जानना हक है मेरा। धृति जो लगातार उससे दूर जाने को छटपटा रही थी झुंझलाते हुए बोली, खुशफहमी है आपकी, क्योंकि मेरे नज़र में आप मेरे कुछ भी नहीं और ना ही आपको मेरे बारे में कुछ भी जानने का कोई हक है। धृति ने तीखे तेवर और बेरुखी भरा जवाब सुनकर अर्णव पल भर उसकी सुर्ख आंखों में झांकता रहा, फिर संजीदगी से बोला, 3 साल बीत गए पर तुम्हारी नाराजगी आज भी वैसी की वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी, इसलिए कह रही हूँ कि दूर रहिए मुझसे। तुमसे दूरी अब गवारा नहीं और मुझसे आपकी करीबी बर्दाश्त नहीं। धृति ने भी उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए टका सा जवाब दिया। अर्णव को उसका ये जवाब सुनकर खौफ ही तो आया था, पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, पार्टनर फिर बदले और धृति उससे दूर हो गई। इसके साथ ही अर्णव वहां से हट गया। डांस के बाद धृति बेचैनी से बस पहलू बदलती रही, बेमन से 2-4 निवाले खाए और उसकी जिद के आगे मजबूर होकर मृणाल उसे लेकर पार्टी से निकल गया। अर्णव जिसकी निगाहें सारे वक्त धृति की निगरानी कर रही थीं, वो भी धृति के पीछे निकला था, लेकिन धृति इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उसके तो होशो हवास उड़े हुए थे, वो अपने ख्यालों में बुरी तरह उलझी हुई थी और मन ही मन खुद को कोस रही थी कि जब 3 सालों से दुनिया और लोगों से कटी रही तो आज वहाँ क्यों चली गई। घर पहुंचकर भी वो अनमनी सी रही, माधुरी के सवालों पर गोलमोल जवाब देकर थकान का कहकर अपने रूम में चली गई, पर नींद आज आंखों से कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी, बेकरारी और व्याकुलता ने मन को घेरा हुआ था। अर्णव के शब्दों ने दिल में तूफान उठाया हुआ था और वो बार बार करवटें बदलते हुए उसकी यादों से निजात पाने की फिजूल सी कोशिशें कर रही थी। दूसरे तरफ अर्णव ने मृणाल को किसी बच्चे को लेकर वहां से जाते देखा, कुछ देर वहीं रुका, फिर होटल चला आया। वो तो कबीर की जिद पर यहां आया था, उसे क्या मालूम था कि जहां उसे उसकी दुश्मनी जान मिल जाएगी। कहां जानता था कि जिस जगह पर धृति के साथ उसने कई हसीन पल बिताए थे, जो जगह उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आई थी और उसने धृति को खो दिया था, वही जगह उसे उसके जीने की वजह से फिर से मिलवाएगी। हालांकि धृति का बेरुखी भरा तल्ख रवैया उसके दिल को चीर गया था, पर फिर भी आज का दिन उसके लिए बेहद खास और यादगार रहा था। 3 सालों से जिसकी एक झलक देखने के लिए उसकी आंखें बेताब थीं, आज वो शख्स उसकी आंखों के सामने था। जिसकी आवाज़ सुनने को उसके कान तरस गए थे, उसकी आवाज़ के तीखेपन ने भले ही उसे ठेस पहुंचाई थी, पर एक सुकून सा उतरा था दिल में। जो धड़कनें बस जिंदगी का बोझ उठाने के लिए मजबूरी में धड़का करती थीं, आज उन्होंने बगावत की थी, क्योंकि उस दिल में बसा इंसान जिसका उसे सालों से इंतजार था, आज उसके बेहद करीब था। शायद बीते 3 सालों में अर्णव मुश्किल से ही कभी मुस्कुराया होगा और उस मुस्कुराहट में भी उसका दर्द, उसकी तकलीफ और जिंदगी का सुनपन झलकता था, पर आज अर्णव दिल से बेहद खुश था। आज वो सालों बाद खुलकर मुस्कुराया था, क्योंकि उस मुस्कुराहट की वजह उसके पास थी। धृति भले ही अब भी उससे नाराज थी, पर उसका यूं दोबारा मिलना उस सजा का अंत था जिसकी आग में वो बीते 3 सालों से जल रहा था, और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इस बार धृति की नाराजगी दूर करके ही रहेगा, उसे अब खुद से दूर नहीं जाने देगा, अपनी जिंदगी को खुद से रूठकर मुंह नहीं फेरने देगा। चाहे आगे का रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उसे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके हिस्से लंबा इंतजार ही क्यों ना आए, पर वो कोशिश जरूर करेगा। धृति से आज हुई मुलाकात की यादों में खोए अर्णव लगभग 3 सालों बाद सुकून की नींद सोया था। अगला दिन धृति के लिए नई मुसीबतें और संघर्ष लेकर आया था और अर्णव के लिए नई उम्मीद। मिशन धृति शुरू हो चुका था। वो सुबह जल्दी ही तैयार होकर उस घर के पास पहुंच चुका था जहां बीती रात धृति आई थी। जबकि आधी रात के बाद आंख लगने के कारण सुबह जल्दी उठने वाली धृति की नींद जरा देर से खुली थी। उठने के बाद भी वो उलझी हुई थी। कल हुई अर्णव से मुलाकात उसके दिलो दिमाग पर हावी थी। मन बुरी तरह अस्त व्यस्त था और जहन बोझिल। अचानक से अर्णव एक तूफान जैसे उसकी जिंदगी में आया था और उसकी शांति से गुजरती जिंदगी में उथल पुथल मचा गया था। धृति अपने बेड पर सर झुकाए बैठी अब भी यही सोच रही थी कि अचानक आई इस अनचाही मुसीबत से कैसे डील करे। जब माधुरी उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ल्ले से खोलते हुए अंदर घुस गई और उसे बेड पर यूं बैठे देखकर हैरत में पड़ गई। धृति, तुम अब तक ऐसी ही बैठी हो? आज तुम्हें अपने कारखाने नहीं जाना क्या? कुछ देर में उसके निकलने का वक्त होने वाला था। माधुरी पहले आई थी पर धृति को सोता देखकर आराम करने दिया था और ऐसे ही बाहर चली गई थी। पर अब तक जिस धृति को जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था, उसे रात के कपड़ों में बिखरी हालत में सुस्त सी बैठे देखकर वो बुरी तरह चौंक गई थी। माधुरी की आवाज़ सुनकर धृति अपने ख्यालों से चौंकते हुए बाहर आई। मन खराब हो गया था उसका, सो उसने गहरी मायूसी से जवाब दिया, मन नहीं आज कहीं जाने का, सोच रही हूँ घर पर रहकर ही आराम करूँ। क्यों, तुम्हारे मन को क्या हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं तुम्हारी? इधर दिखाओ मुझे, बुखार तो नहीं हो गया? माधुरी ने चिंतित स्वर में हड़बड़ी में सवाल किया और आगे बढ़कर उसके माथे और गर्दन को छूकर देखने लगी। वो जितनी हैरान थी उतनी ही परेशान भी थी, क्योंकि धृति कभी छुट्टी नहीं करती थी और आज सुबह से उसका व्यवहार सामान्य नहीं था, चिंता जायज थी। धृति ने उसे यूं परेशान होते देखकर अपनी उलझनों को परे झटक और हौले से मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस जहन थोड़ा थक गया है तो आराम करना चाहती हूँ। तुम मृणाल को कहना कि कुश को मेरे पास छोड़ जाए, आज मेरा मन बहल जाएगा। चलो ठीक है, बोल देती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आओ, साथ में नाश्ता करते हैं, उसके बाद आराम करते रहना। धृति ने सर हिलाया और उठकर बाथरूम में चली गई। दोनों नाश्ता कर ही रही थीं जब कुश के साथ मृणाल वहाँ पहुँच गया। बाहर छिपकर खड़ा अर्णव, जो पहले मास्क फिर रात के अंधेरे के कारण मृणाल का चेहरा नहीं देख सका था, दिन के उजाले में जब मृणाल पर उसकी नज़र पड़ी तो आंखों के सामने सालों पहले का वाकया जीवंत हो गया और चेहरे के भाव बिगड़ गए।
दरवाज़ा धृति ने खोला था और उसे देखते ही कुश जो मृणाल की बाहों में था जंप मारते हुए धृति से लिपट गया था। मम्मा मम्मा कहते हुए उसके चेहरे को कितनी ही बार चूम लिया, मृणाल की ढेरों शिकायत भी लगाई और जिस तरह धृति उसे लाड़ कर रही थी, उसकी मासूमियत भरी बातों को सुनते हुए मुस्कुरा रही थी, अर्णव की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई थीं। फिलहाल वो खामोश ही रहा। कुछ देर बाद मृणाल के साथ माधुरी घर से बाहर आई और उसकी कार में बैठकर वहां से निकल गई। धृति का मूड कुश के आने से काफी बेहतर हो गया था, कुछ पल के लिए ही सही, पर अर्णव वाली बात उसके जहन से निकल गई थी और अपनी सारी चिंता फिक्र और डर भुलाकर वो कुश के साथ खेलने में मगन थी, जब अचानक ही डोरबेल की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके घर किसी का आना जाना नहीं था, माधुरी और मृणाल दोनों जा चुके हैं, अब कौन आया होगा, ये सोचते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। जहन में पहला ख्याल ही अर्णव का आया कि कहीं वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं पहुँच गया। दिल बुरी तरह घबराया था और जान जैसे हलक में आकर अटक गई थी। डोरबेल लगातार 3-4 बार बज चुकी थी। धृति ने अपनी बिखरी हिम्मत को बटोरते हुए खुद को आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार किया और कुश को खिलौनों के बीच उलझा छोड़कर खुद दरवाजे की ओर बढ़ गई। उम्मीद थी कि दरवाज़ा खोलते ही अर्णव का चेहरा सामने आएगा, पर जब दरवाज़ा खोला तो चौंक गई, सामने कोई था ही नहीं, तो डोरबेल किसने बजाई? धृति अपनी ही सोच में उलझ गई, फिर आगे बढ़कर अगल बगल झांकने लगी पर कोई नज़र नहीं आया। उलझन हुई पर फिर सर झटकते हुए वापस घर की ओर बढ़ गई। उसने जैसे ही घर में पहला कदम रखा, एक बार फिर वो बुरी तरह चौंक गई। टू बी कंटिन्यूड।